Hare Krishna. Am să uităm Dumnezeu de și Bhagavata Gajan. Toată această șloc e bol părita. Dar am să părăim de asta de zăcat ne-am arăbit să bici de la Iva. Yatha Trivargam Guru Bhi
Yatha Trivargam Guru Bhi
Yatha Trivargam Guru Bhi
किसी भी प्रकार की भक्तिमय कार्य में कोई भी रुचि नहीं लेता।
जो भी बॉडी अफेयर्स है, संसार से संबंधित जो भी कार्य है, भौतिकता वाली व्यक्ति की रुचि केवल उसी में ही रहती है। तो यही प्रश्न नारद मुनि के मन में भी उठा था एक बार। हम सब इस कथा से परिचित होंगे कि किस प्रकार से नारद मुनि को लगा कि इतने संसार में इतने सारे लोग हैं जो दुख भोग रहे हैं, तो भगवान का क्या हृदय कठोर है जो भगवान को अपने पास बुलाना नहीं चाहते। तो नारद मुनि ने भगवान ने किस प्रकार से परमिशन दी थी, और फिर नारद मुनि कैलाश नामक एक लड़के के पास गए और सिर्फ रिक्वेस्ट किया कि आप चलिए भगवान के धाम में, पर वो व्यक्ति जाना नहीं चाहता था। तो श्री प्रभुपाद भी इसी प्रकार से, श्री प्रभुपाद जब गए पाश्चात्य देशों में, तो प्रभुपाद ने पाश्चात्य देशों में जाने से पहले यही सोचा कि जो भारत है, भारत का हर व्यक्ति पाश्चात्य देशों को फॉलो कर रहा है, बेसिकली भौतिकतावाद को फॉलो कर रहा है, फॉलो करने का प्रयास कर रहा है। तो जब तक ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो भौतिकतावाद, जिसने अपने इस कंसेप्ट को कि मटेरियलिस्टिक लाइफ, मटेरियलिस्टिक वे ऑफ लिविंग में हैप्पीनेस नहीं है, जिस व्यक्ति ने ऐसे विचार को नहीं त्यागा होगा, तो अगर ऐसा कोई व्यक्ति करके दिखाएगा भक्ति, तो ये भारत के लोग समझ पाएंगे कि भक्ति क्या है। क्योंकि आजकल के कंट्रास्ट में भी हम लोग देख रहे हैं कि पूरे भारत भौतिक समाज में, चाहे कोई स्कूल है, चाहे कोई कॉलेज है, किसी भी प्रकार का इंस्टीट्यूट क्यों नहीं है, हर जगह सिर्फ जो एजुकेशन दी जा रही है वो एजुकेशन इसलिए है कि कैसे अपनी मटेरियलिस्टिक लाइफ को बेटर किया जा सके, कैसे हम और अच्छे से अच्छे सेंस क्रिटिफिकेशन इंद्रतृप्ति में आगे बढ़ सके, कैसे और इंद्रतृप्ति कर सके। पूरा स्कूलिंग का, पूरी एजुकेशन का जो पर्पस है, वो पर्पस यही है कि अपनी भौतिक लाइफ को, इंद्रतृप्ति को कैसे बढ़िया बनाया जा सके। हर स्कूल्स में, हर न्यूज पेपर्स में, किसी भी प्रकार की मैगजीन्स में, केवल एक ही जो मेन होता है इसका, कि किस प्रकार से बेसिकली पढ़ाई का, एजुकेशन का पर्पस ये है कि हमारी अज्ञानता को खत्म करे। एजुकेशन ज्ञान का मतलब, नॉलेज का मतलब है कि अज्ञानता किस प्रकार से काटी जा सके, खत्म की जा सके। परंतु भौतिक संसार में जो भी एजुकेशन दी जा रही है, वो एजुकेशन का पर्पस यही है कि इंद्रतृप्ति को कैसे बेटर और सिस्टमैटिक किया जा सके, ताकि हम जितना चाहे उतना भोग सके, कभी थके ना। पूरा भौतिक संसार और पूरे भौतिक संसार के सारे नियम एक ही तरफ प्रेशर दे रहे हैं कि अपनी मटेरियलिस्टिक लाइफ को, जो हमारी मटेरियलिस्टिक टेंडेंसी है, कैसे इसे निकाला जाए और इंद्रतृप्ति में लगा जाए। और आजकल के जो लीडर्स हैं, जो टीचर्स हैं, अगर हम कंपेयर करें पहले के जमानों में किस प्रकार से गुरुकुल हुआ करते थे, और शिष्य जो भी है, स्टूडेंट्स जब एजुकेशन के लिए, शिक्षा के लिए जाते थे गुरु के आश्रम में, गुरुकुल में, तो गुरुकुल में जाने के बाद गुरु ने प्रशिक्षण देते थे कि मैं कौन हूं ये जानो, भगवान कौन है ये जानो, और हमारा भगवान से संबंध क्या है ये जानो। पर अगर आजकल हम देखें तो ये जो शिक्षाएं हैं ये सारी मिसिंग हैं, इनमें से किसी भी शिक्षा पर फोकस नहीं किया जा रहा। फोकस यही किया जा रहा है कि मैं बस जो मैं हूं वो ये शरीर हूं, और इस शरीर से मैं कैसे जा सकता भोग सकूं, और यही भोगना मुझे खुशी देगा। तो सारी एजुकेशन के जो गोल्स हैं, जो लक्ष्य है, वो बदल गया है। पहले देखा जाता था कि शिष्य अगर इसमें भी शान कभी प्रभात मास तो दंड देने लगते थे, तो पहले देखा जाता था कि जो टीचर्स होते थे, टीचर स्टूडेंट्स को पनिशमेंट देते थे अगर कोई गलत कार्य करते हैं। पर सबसे पहली बात, आजकल टीचर्स भी गलत कार्य करते हैं तो स्टूडेंट्स को पनिश कैसे करेंगे, हर व्यक्ति गलत प्रकार के कार्य में लगा है। और उसके बाद भी क्योंकि जो नियम है आज तक जो बनाए जा रहे हैं, वो इसी प्रकार से कि आप किसी को पनिश नहीं कर सकते। अगर आप किसी को गलत करता देख भी रहे हैं तो आप उसको पनिश मत कीजिए, है ना, क्योंकि उनको लगता है कि सेंस गेटिफिकेशन, इंद्रतृप्ति करना, इंडिपेंडेंट होना, ये सब जीवों का कर्तव्य है। अगर कोई अपनी मर्जी से इंद्रतृप्ति नहीं कर पा रहा तो दुखी है। तो आजकल के स्कूल्स में जैसे एक बता रहे कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, हर स्कूल्स में थ्रू प्रेजेंटेशंस के थ्रू समझाया जाता है, तो यही कंप्यूटर से, टेक्नोलॉजी के थ्रू जो बच्चे हैं स्कूल्स में पोर्नोग्राफी सब मूवीज देखते हैं। और पहले जमाने में देखा जाता था कि जब गुरुकुल में कोई जाता था तो धुआं उठता नजर आता था, यज्ञ होते थे, भगवान की प्रसन्नता के कार्य होते थे। आजकल भी धुआं उठता है, पर वो स्मोकिंग का धुआं होता है, जो स्कूल में उठता है वो धुआं यज्ञ का धुआं नहीं होता। तो बहुत बड़ा परिवर्तन आ चुका है जो पहले जमाने की एजुकेशन थी और आज की एजुकेशन में। तो जो भी एजुकेशन हैं, चाहे वो मेडिकल सोसाइटीज हो, चाहे वो ऑलमोस्ट सभी स्पिरिचुअल सोसाइटीज हो, सभी सोसाइटी सभी का कर्तव्य एकमात्र लक्ष्य यही है कि किस प्रकार से भगवान की एग्जिस्टेंस को खत्म किया जा सके, क्योंकि जब तक भगवान की एग्जिस्टेंस रहेगी, भगवान जैसी कोई चीज है, तब तक हम इंद्रियों की नहीं कर पाएंगे खुलकर। तो सबसे पहले इस भगवान को, जो रस्ते में सबसे बड़ी बाधा है भगवान, सबसे पहले इसको साइड करो, फिर इंद्रियों में कोई बाधा नहीं आएगी। इवन तो मेटेरियलिस्टिक स्कूल्स है, स्पिरिचुअल सोसाइटीज में भी हम देखें तो मायावादी निराकारवादी ये सब भगवान की एग्जिस्टेंस को खत्म कर रहे हैं। भगवान का कोई स्वरूप नहीं है, कोई रूप नहीं है भगवान का, भगवान ऐसा कुछ होता ही नहीं है। कुछ लोग कहते हैं भगवान ज्योति है, कुछ लोग कहते हैं भगवान बूढ़े हो गए हैं, कुछ लोग कहते हैं भगवान मर गए हैं। तो हर कोई भगवान की एग्जिस्टेंस को बिल्कुल खत्म कर रहा है। किस लिए? क्योंकि कोई आध्यात्मिक ज्ञान, स्पिरिचुअल एजुकेशन प्रोवाइड नहीं किया जा रही। स्पिरिचुअल एजुकेशन का मतलब है लाइट, एनलाइटनमेंट। तो जब ज्ञान दिया जाएगा तो ज्ञान के माध्यम से, उस प्रकाश से जो भी हमारी अज्ञानता है वो अपने आप क्षय होगी, खत्म होगी। और अगर हम देखें मटेरियल सोसाइटी का प्रभाव इतना बढ़ गया है कि डिवोटीज में, भक्तों के समाज में भी भक्त लोग कोशिश करते हैं कि अपने बच्चों को अच्छा प्रशिक्षण दें, पर तो फिर भी उनके अंदर एक बहुत बड़ा डाउट रहता है कि अगर मेरे बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो कैसे कंफर्टेबल बनेंगे लाइफ में, जीवन में आगे कैसे बढ़ेंगे। अगर मेरे बच्चों ने पढ़ाई नहीं की तो भविष्य में क्या होगा, पैसे कैसे कमाएंगे वो, और किस प्रकार से उनसे किसी ना किसी प्रकार से काम करवा के ये लक्ष्य दिया जाता है कि वो भगवान को भूल जाए। तो क्योंकि उनको लगता है कि अगर मेटीरियल लाइफ में वो आगे नहीं बढ़े तो उनका कोई एग्जिस्टेंस है ही नहीं। उनको लोग पागल बुलाएंगे, बेवकूफ बुलाएंगे, या लोगों को पता लगेगा कि अरे आपका बच्चा पढ़ता नहीं है स्कूल में, आपने से गुरुकुल में भेजा है, कोई मेटीरियल एजुकेशन नहीं। मेटीरियल एजुकेशन पढ़ के होगा क्या है? कुछ नहीं होता। जो मेटीरियल एजुकेशन जितना आगे बढ़ जाता है वो उतना ज्यादा कंफ्यूज रहता है, हमेशा प्रश्नों से घिरा रहता है, क्योंकि इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर चुका होता है अपनी लाइफ को कि उससे बाहर ही निकल पाता। तो सारी मेटीरियल एजुकेशन का पर्पस बेसिकली भगवान, जो भगवान से किस प्रकार से दूर लेके जाया जाए और इंद्रियों की तरफ आगे बढ़ा जाए। कभी कभी माता पिता का कंसेप्ट ये होता है कि प्रभु जी हमारी जो जिम्मेदारी है तो अपने बच्चों को किस प्रकार से सेटल कर लें, पहले एक बार बच्चे सेटल हो जाएं तो हमारी जिम्मेदारी पूरी हो जाएगी। तो हमें समझना पड़ेगा कि बच्चों को सेटल करने का मतलब क्या है। बच्चों को सेटल करने का मतलब कोई भौतिक जीवन देना नहीं है। हमको आपने उनको सेटल क्या किया है, ऐसा सेटल किया है कि कभी भौतिक संसार से बाहर निकल नहीं पाएंगे, हमेशा ही सेटल रहेंगे, हमेशा यहीं पर रहेंगे, जो भुगत रहेंगे और सड़ते रहेंगे। बच्चों को सेटल करने का मतलब है कि उनको कृष्णा कॉन्शियसनेस प्रोवाइड की जाए ताकि किस प्रकार से इस भौतिक संसार से बाहर निकलकर वो भगवान के धाम में सेटल हो। ये असली सेटल होना है, क्योंकि भौतिक जो जगह है ये टेम्परेरी है, इसमें कोई व्यक्ति ज्यादा लंबे समय तक सेटल नहीं रह सकता, क्योंकि ये वर्ल्ड मेटीरियल वर्ल्ड ही अपने आप सेटल नहीं रहेगा, ये अपने आप में खत्म हो जाएगा। तो आजकल की जो भी आसुरिक मेंटेलिटी है, जिस आसुरिक मेंटेलिटी के कारण जो एजुकेशन दी जा रही है, उस एजुकेशन का जो मुख्य गोल, मुख्य लक्ष्य सबको प्रोवाइड किया जा रहा है वो है कैसे पैसा कमाया जाए, कैसे ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाया जाए, हमें ज्यादा पैसा मिलेगा, ज्यादा धन आएगा हमारे पास, तो कैसे अच्छी इंद्र तृप्ति हो पाएगी, अच्छा सेंस ग्रेटिफिकेशन हो पाएगा। और सेंस ग्रेटिफिकेशन भी कोई ऑर्डिनरी नहीं, बिल्कुल सिस्टमैटिक, बिल्कुल प्लानिंग के साथ सिस्टमैटिक कैसे बेटर किया जा सके। धन जो आजकल का है धन, हालांकि वो धन नहीं है, पहले जमाने में जो धन होता था वो सोना होता था, फिर धन चांदी बना, फिर धन लोहा बना, फिर पेपर नोट आए, फिर प्लास्टिक के चेक्स वगैरह सब। आजकल धन क्या है? आप बैंक जाते हैं, एटीएम मशीन पर लिखा होता है कि आपके बैंक में इतने करोड़ रुपए हैं, यही धन है आपका। तो ये जो हैप्पीनेस है, ये जो डिजिट्स है, कि हम हैप्पीनेस नहीं दे सकते। एक डिजिट से कोई व्यक्ति खुश नहीं होता। अगर एक डिजिट से खुश होता है कोई व्यक्ति तो अपने आप खुश करने के लिए ऐसे कुछ बना ले लीजिए, डिजिट्स बना लीजिए, उसमें 3-4 जीरो एक्स्ट्रा लगा के रख लें ताकि हमें कभी ये ना लगे कि मेरे पास धन नहीं है। क्योंकि जो बैंक का धन है वो भी यही है, एक नंबर है आगे और जीरो है उसके पास, यही धन है सारा। एक बार फिर उससे पूछा कि प्रभु जी आप इतना परिश्रम, आप मंदिर नहीं आते, इतना हार्ड वर्क इतना क्यों करते हैं आप? तो कहते प्रभु जी रहते हैं सोसाइटी में हम लोग, तो एक अपना स्टेटस मेंटेन करने के लिए हमारे को तो कुछ कुछ धन कमाना पड़ेगा, तो स्टेटस मेंटेन नहीं हो तो लोग क्या सोचेंगे हमारे बारे में कि ये किसी काम के नहीं है लोग। तो हमारा जो बेसिक पर्पस है, जो हमारा बेसिक जो हमारा कंसेप्ट है वो बाहर के लोगों को संतुष्ट कर रहा है कि बाहर का कोई भी व्यक्ति हमारे से नाराज ना हो, किसी भी व्यक्ति को ये ना लगे कि मैं कुछ हूं नहीं, सबको लगे कि मैं भी कुछ हूं, मेरा भी कुछ है, मतलब कोई रुतबा है मेरा भौतिक संसार में। तो जब तक भौतिक संसार में इस रुतबे के लिए हम कार्य करेंगे, तब तक आध्यात्मिक जगत के लिए आगे बढ़ने के लिए हम कभी कुछ नहीं कर पाएंगे। अभी वृंदावन में बता देते हैं, अभी रिसेंटली एक छोटी सी, जो वृंदावन जाते हैं सब लोग पैसे मांगते हैं, तो ऐसे कोई बच्चा छोटी लड़की पैसे मांग रही थी, तो एक भक्त ने उसको दूध का गिलास लेके दिया प्रसाद भगवान का, तो उसने क्या किया कि उस दूध की गिलास को दोबारा दुकानदार को जाकर बेच दिया 10 रुपए में। तो जितने भी आजकल का जो समाज है वो इसी पे ही निर्धारित है, सबको लगता है कि अगर पैसा हाथ में आ जाएगा तो सब कुछ हो जाएगा। तो स्पिरिचुअल एजुकेशन जो आध्यात्मिक ज्ञान है, किसी इससे किसी का कोई संबंध नहीं है, और ये आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है इसी कारण से हम देखते हैं कि पूरे समाज में डिवाइडिंग है, दोगलापन है, क्योंकि स्पिरिचुअल एजुकेशन बिल्कुल जीरो है। हमारे जीवन का जो असली कर्तव्य है, जीवन का जो लक्ष्य फोकस होना चाहिए, वो है कि हम किस प्रकार से आत्माराम बन सके। यहाँ पर ट्रांसलेशन क्या बताया गया है, इसका फोर्थ लाइन है, द्वंद्वारामो वर्णिताम। द्वंद्वाराम का मतलब क्या है, द्वैत शत्रुता तथा मित्रता में आनंद लेने वाले व्यक्तियों द्वारा। तो आजकल के जो भी लोग हैं वो आत्माराम नहीं रहे, वो द्वंद्वाराम हो गए हैं। इंटरनल उनको कोई हैप्पीनेस नहीं मिलती, इंटरनली वो ब्लिस फील नहीं कर पाते, उनको क्या द्वंद में, सुख दुख में, शत्रु मित्र में, ये मेरा दोस्त है खुशी मिलती है, मेरा दुश्मन है उसको सड़ता देख के खुशी मिलती है, इन चीजों में खुशी मिल रही है आज। तो जो हमारा हैप्पीनेस का जो रियल कंसेप्ट है वो बदल चुका है, क्लेशों में हमारे को खुशी मिलने लग गई है, लोग बहाना ढूंढते लड़ने का। महात्मा गांधी, हो सकता है मैं गलत बता रहा हूं, अगर किसी को रियल स्टोरी पता हो तो करेक्ट कर सकते हैं। पर महात्मा गांधी शिप में ट्रेवल कर रहे थे, तो एक व्यक्ति ने ऊपर से देखा, उसको बहुत गुस्सा आया क्योंकि मॉडर्न था व्यक्ति, उसने कहा कि क्या ये धोती कुर्ता चादर पहन के बैठा हुआ है। उसने चिट्ठी में बहुत गलत शब्द लिखे, उसको भेजे महात्मा गांधी को, और जैसे भेजे महात्मा गांधी ने उस चिट्ठी को फेंका और कूड़े में फेंक दिया। अब ये व्यक्ति था जो जान के लड़ाई करना चाहता था, वो देखना था कि ये रिएक्ट करे और फिर मैं और लड़ाई करूं, स्क्वायर में वो बदल लेना चाहता था। तो महात्मा गांधी ने कोई रिएक्ट नहीं किया और उसको कूड़े में फेंक दिया, तो ये व्यक्ति और परेशान हो गया। तो ये गया उसे पूछने के लिए, उसने कहा कि भाई मैंने आपको इतने गलत शब्द लिख के दिए हैं, आपने कुछ रिएक्ट क्यों नहीं किया। उसने कहा भाई इसमें जो अच्छी चीज थी वो मैंने निकाल ली और बाकी मैंने फेंक दिया, क्या आपको अच्छी चीज लगी इसमें, इसलिए इसकी जो और बेहतरीन तो काम की बाकी कुछ काम करता बाकी उसने फेंक दिया। पर भौतिक संसार में हर व्यक्ति कुछ ना कुछ झगड़ा करने का मौका ढूंढता है, किसी प्रकार से लड़ाई कर रहे हैं, किसी प्रकार से झूठ बोलकर, कोई हिपोक्रेसी दिखाकर, किसी ना किसी प्रकार से लोगों शांति बर्दाश्त नहीं होती, घर में शांति होती ना थोड़ा अजीब सा लगने लगता है, टीवी को तेज वॉइस पर चलाएंगे बिल्कुल फुल वॉल्यूम पे, म्यूजिक बिल्कुल फुल वॉल्यूम पे चलाएंगे, किस तरीके से ज्यादा से ज्यादा शोर हो ताकि खत्म हो। तो यही यही द्वंद है, और इन्हीं द्वंद्वों में हम खुशी ढूंढ रहे हैं, हमें लग रहा है कि यही हैप्पीनेस है, यही सब कुछ है, बस ये मेरा मित्र, ये शत्रु, ये सुख, ये दुख, ये सर्दी है, गर्मी, इसी में सारी हैप्पीनेस है। लेकिन कोई बुद्धिमान व्यक्ति हो, अगर किसी के हाथ से खून निकल रहा हो या शरीर के किसी अंग से खून निकल रहा हो तो क्या करेगा, खून निकलना अच्छी बात है हमारे शरीर से, डॉक्टर के पास जाएगा, उसका ट्रीटमेंट करवाएगा, क्योंकि खून निकल रहा है ये शरीर के लिए नुकसानदायक है। परंतु जब कामुक वासनाओं में व्यक्ति बह जाता है और सेक्स लाइफ में इंटरेस्ट होने के बाद जब अपने सीमन को वीर्य को वो प्रवाहित करता है, तो वो वीर्य की एक बूंद 40 से 60 खून की बूंदों की बनती है। तो ये दुख, ये काम ऐसे कार्य करते हुए उसको किसी प्रकार का कोई दुख नहीं होता, क्योंकि वो क्या है, इसी को भी खुशी मान चुका है। असत्य सत्य करी मानी, जितनी भी भौतिक संसार की असत्य चीजें हैं, झूठी चीजें हैं, उसको खुशी मान लिया है। प्रसाद में कुछ लोग कंप्लेन करते हैं कि मंदिर का प्रसाद होता है उसमें स्पाइसेस कुछ नहीं होता, मजा नहीं आता। तो लोग बोले जब तक जीभ जलती नहीं ना, जब तक सड़ नहीं रही होती ना जीभ, तब तक आग नहीं लगती थी जीभ पे, तो उसको मजा आता ही नहीं है। तो क्या अपना को दुख देके मजा आता है, जीभ जल रही किसी व्यक्ति की उसको दुखी होना चाहिए, मजा आता है उसमें, टेस्ट मिल रहा है उसको। आग में अगर किसी का हाथ जला उसको कैसा लगता है, दर्द होती है, पर खुद ही स्मोक करता था कि अपने को जलाए अंदर से, जलाता रहता है अपने आप अंदर से, क्योंकि क्या है उसकी डेफिनेशन
हैप्पीनेस की कुछ चेंज हो गई है, आत्मा राम से वो द्वंद्व राम हो गया है, वो अब उसको हैप्पीनेस आत्मा की नॉलेज से मिलती नहीं, उसको हैप्पीनेस मिल रही है इन ड्यूअलिटीज में, मटेरियल लाइफ की ड्यूअलिटीज में। जिस प्रकार से ऊंट जब एक कटीली झाड़ियां खाता है तो उसकी जीभ से खून निकलता है, तो उसको लगता है कटीली झाड़ियां बहुत मीठी लगता है, बार बार कटीली झाड़ियां खाता है, हाँ जो उसको टेस्ट आ रहा था अपने खून का आ रहा होता है, उसके लिए नुकसानदायक है पर उसको समझ नहीं आ रहा होता। तो हमारी भी स्थिति, क्योंकि हम इन्हीं चीजों में आनंद ले रहे हैं ना, कोई हमारा दुश्मन है अगर उसको दुख हो रहा है उसमें इतनी हैप्पीनेस मिलती है कि उसका कोई मतलब इमेजिनेशन नहीं है, भ्रम सोच रहा होता, उससे ज्यादा हैप्पीनेस किसी को मिलती नहीं है कि ये व्यक्ति दुखी है बस, अब मेरे को अच्छा लग रहा है इसको दुखी देखिए, इसका मुंह उदास देख लिया, इसको दुखी देखिए, इसकी आंखों में आंसू देखिए, यही यही खुशी है बस। जब तक व्यक्ति इन चीजों में फंसा रहता है तब तक कभी भी वो आगे नहीं बढ़ पाता। और जितना भी भौतिक समाज है, पूरा भौतिक समाज में जो एजुकेशन की आजकल दी जा रही है विशेषकर पाश्चात्य देशों में, कि अगर कोई व्यक्ति ऐसे कार्य नहीं करता, विशेष रूप से काम उपासना यौन संबंध, जब तक ऐसे कार्य नहीं करता तो उनकी धारणा के अनुसार ऐसे लोग को डिप्रेस करते हैं, तो उनकी जो हैप्पीनेस की डेफिनेशन बिल्कुल चेंज हो गई है। हैप्पीनेस का सिर्फ यही मतलब है कि एक्सटर्नल रूप से कुछ चीजों को चेंज कर ले तो वो हैप्पीनेस है, इंटरनल जो वर्ल्ड है हमारा इंटरनल वर्ल्ड है, एक्सटर्नल वर्ल्ड में हम कुछ चेंजेस कर लेते हैं, माहौल बदल लिया, कपड़े बदल लिए, रहन सहन बदल लिया, पर जो इंटरनल वर्ल्ड है जो उसके अंदर चीजें चल रही है उसको बदलने के बाद हम कभी नहीं सोच पाते। तो हमें प्रयास करना चाहिए कि एक्सटर्नल वर्ल्ड को हम चेंज कर रहे हैं, इंटरनल वर्ल्ड पे फोकस करें, और इंटरनल वर्ल्ड पे तभी फोकस किया जा सकता है जब हमें स्पिरिचुअल एजुकेशन मिलेगी, आध्यात्मिक ज्ञान मिलेगा। और प्रभुपाद यहाँ पर तात्पर्य में इसमें यही बता रहे हैं कि स्पिरिचुअल एजुकेशन में अधिकांश लोग भौतिक संसार के 99.9% लोग इंटरेस्टेड नहीं है स्पिरिचुअल एजुकेशन में, केवल उन्नत वैष्णव जैसे प्रहलाद महाराज, नारद मुनि, केवल यही लोग जो है स्पिरिचुअल एजुकेशन में बढ़ना चाहते हैं। अगर हम देखें तो बाहर समाज में आजकल किसी को वेल सेटल्ड किसको माना जाता है, जिसके पास कभी कुछ नहीं था, बिल्कुल जीरो था, एक रुपया नहीं था उसके पास, उससे क्या है वो हीरो बन गया, जीरो से हीरो बन गया, अंबानी, बिल गेट्स, बड़े बड़े लोग जीरो के बिल्कुल कुछ नहीं था उनके पास, उससे हीरो बन गए। पर जो आध्यात्मिक संसार की जो डेफिनेशन है वो बिल्कुल विपरीत है। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, ये हीरो थे, हीरो से क्या बने, ये जीरो बने। तो हीरो से जीरो बनने के बाद ये असली दरअसल धनवान बना है, ये असली रिच बना है, असली धनवान बना है। कुंती महारानी कहती हैं, जन्म ऐश्वर्य शुद्धि श्री एक माना मधा कुमार नए अर्थ अभिधातु वही तुम अकिंचन भोजना माई लॉर्ड योर लॉर्डशिप कैन इजली बी अप्रोच ओनली बाई दोज डिवोटीज हु आर मेटेरियली एग्जॉस्टेड। कुंती महारानी कह रहे हैं कि हे भगवान, तुम्हें वही लोग प्राप्त कर सकते हैं जो पूरी तरीके से भौतिक रूप से खत्म है, इनका भौतिक संसार, भौतिक एग्जिस्टेंस एग्जिस्ट ही नहीं करती, कोई भौतिक एग्जिस्टेंस है ही नहीं उनकी। तो दरअसल यही धनवान व्यक्ति है और यही धनवान की परिभाषा है। और बहुत सारे राजऋषि रहे हैं, भरत महाराज इत्यादि, जिन्होंने अपना सभी भौतिक धन त्याग किया, किस कारण से त्यागा, क्योंकि उनके पास स्पिरिचुअल एजुकेशन थी, आध्यात्मिक ज्ञान था, यही ज्ञान रियल हैप्पीनेस दे सकता है। मटेरियल लाइफ की जो सारे जो फंडे हैं वो बिल्कुल उल्टे हैं। पहले क्या होता था कि लोग जब शादी करते थे, विवाह करते थे, तो बहुत धूमधाम से विवाह करते थे, बहुत धूमधाम से शादी करते थे। शादी करने के बाद कुछ साल बच्चों को आध्यात्मिक ज्ञान में प्रशिक्षण देने के बाद, ट्रेन करने के बाद वानप्रस्थ लेते थे और अलग अलग थे, धीरे धीरे सब फैमिली मेंबर धीरे करके अलग अलग। पर आजकल क्या होता है कि जो शादी है वो फ्री होती है, कोर्ट मैरिज, और डाइवोर्स करने के लिए व्यक्ति को बहुत पैसा खर्चना पड़ता है अलग होने के लिए। तो जो भी चीजें हैं भौतिक संसार की बिल्कुल उल्टी हो रही है। तो ये जो मटेरियल लाइफ है, एक्चुअली दिस इज मेंट टू बी गिवन अप, ये भौतिक संसार है, इसको हमें त्यागना ही पड़ेगा। अगर भौतिक संसार को, भौतिक भावनाओं को, भौतिक विचारों को हम त्यागेंगे नहीं तो हमेशा यहीं पर ही सेटल रहेंगे। इस मनुष्य जीवन का पर्पस यहां पर सेटल होना नहीं है, इस मनुष्य जीवन का पर्पस है यहां से निकलना। अगर हम ऐसी मटेरियल एजुकेशन लेते रहेंगे जो हम यहां पर सेटल करते रहे, क्योंकि मेटीरियल एजुकेशन हमारे लिए हार्मफुल है। एजुकेशन का मतलब यही है, ज्ञान का मतलब यही है जो हमारी अज्ञानता को काटे। शास्त्र का मतलब वही है जो शास्त्र का कार्य करे और हमारी इग्नोरेंस को काटे। तमसो मा ज्योतिर्गम्यम्, अंधकार से प्रकाश की ओर लेके जाए हमारे को। अगर अंधकार से ना हो और अंधकार में कोई चीज जा रही है तो ज्ञान नहीं है। क्योंकि ये जो मनुष्य जीवन है 84 लाख योनियों में मनुष्य जीवन की जो कॉन्शियसनेस है ये सबसे हाई कॉन्शियसनेस है, सबसे उच्चतम चेतना। क्योंकि ये जो मनुष्य जीवन मिला है ह्यूमन लाइफ मिली है ये माइंड अप के लिए मिली है। अब आप काफी लंबे समय से पिछले 80 लाख योनिया से आप इस भौतिक संसार में रह चुके हैं। अब नाउ दिस इज द टाइम टू माइंड अप। आप क्या करो, माइंड अप करो, इसको सबको पैक करना शुरू करो सब कुछ। बस आप जितनी भी भौतिक आसक्तियां हैं, जो भी आपके इंद्र तृप्ति, जो भी आज तक करते आए हो, उसको खत्म करो और कृष्ण कॉन्शियसनेस के प्रति आगे बढ़ के इसको माइंड अप करो। तो बुद्धिमान व्यक्ति वही है, बुद्धिमान मनुष्य वही है जो इस भौतिक संसार से अपने आप को निकालने की कोशिश करे। यहां पर कोई भी व्यक्ति अगर सेटल होने की कोशिश कर रहा है तो बुद्धिमान नहीं है, वो मूर्ख है, वो बेवकूफ है। और यही बताया गया है कि इस भौतिक संसार में हमें बिल्कुल भी नहीं फंसना चाहिए। प्रहलाद महाराज ये कह रहे हैं तदपि अध्रुवम अर्थम, बिल्कुल मत फंसो इस भौतिक संसार में। क्योंकि इसमें जो भी चीज हमें मिल रही है, चाहे वो हमें सुख मिल रहा है चाहे वो हमें दुख मिल रहा है, वो हमारे दुख का कारण नहीं है, वो हमारे बंधन का कारण नहीं है। हमारे उदाहरण में देखिए प्रहलाद महाराज, प्रहलाद महाराज कोई इंटरेस्ट नहीं था उनकी, जो टीचर्स उनको एजुकेशन दे रहे हैं धर्म अर्थ काम के बारे में, उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है इसमें। क्योंकि उनको पता है कि अगर वो इस एजुकेशन में इंटरेस्ट लेंगे तो उनका जो रियल एजुकेशन है, जो रियल भक्ति है, वो भक्ति खत्म हो जाएगी। तो इस एजुकेशन में कोई इंटरेस्ट नहीं है। चार कुमार छोटे छोटे बच्चे थे, जब 5 साल की आयु के थे उन्होंने क्या किया, अपनी शक्तियों से अपने आप को आगे ऊपर में बढ़ने से रोक लिया। उनको पता था कि अगर आयु बढ़ेगी तो डिजायर्स बढ़ेंगी, इच्छाएं बढ़ेंगी और बंधन में फंसते रहेंगे। तो अच्छा क्या है, यही उम्र रहे, ना कपड़े पहनने पड़े, ना कोई भौतिक इच्छा हो, ना कुछ करना पड़े, फ्रीली भगवान की भक्ति करें। तो अपने आप बंधन में फंसने नहीं दिया उन्होंने। सुखदेव गोस्वामी माता के घर से बाहर ही नहीं आ रहे थे, बाहर निकल के फंसना बहुत दूर की बात है, वो बाहर ही नहीं आना चाहते जब तक भगवान ने स्वयं आके आश्वासन नहीं दिया उनको कि आप फंसोगे नहीं, आप बाहर आ जाओ। तब तक वो माता के घर से बाहर ही नहीं निकलना चाहते कि मैं फंस जाऊंगा इस भौतिक संसार में। तो जो भी बुद्धिमान मनुष्य है उसको चाहिए कि ऐसी प्लानिंग करे कि किसी भी प्रकार से, किसी भी तरीके से इस भौतिक बंधन में फंसे ना। हमारे पास ऑलरेडी अटैचमेंट्स की कमी नहीं है, आसक्तियों की कमी नहीं है, बहुत आसक्तियां हमने पहले से ही पाली हुई है। अब हमें यह प्रयास करना चाहिए कि और आसक्तियां ना पालें और जो हमारे बच्चों की आसक्तियां भी हैं जिसमें काफी समय से फंसे हुए हैं इससे भी निकलने की कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। अभी भी अगर हम अपने पूरे टाइम को बिजी कर देंगे बिल्डिंग बनाने में, घर बनाने में, प्लॉट खरीदने में, तो हम कभी यहां से बाहर नहीं निकल पाएंगे, हमारा पूरा सेटलमेंट यहीं पर ही रहेगा। क्योंकि सारा का सारा जो हमारा फोकस है वो यही है। तो रियल धर्म, जो यहां पर धर्म की चर्चा हो रही है, दरअसल वो धर्म नहीं है। ये जो धर्म यहां पर बताया गया, धर्म की चर्चा हो रही है, दरअसल ये अधर्म है, ये धर्म नहीं है। रियल धर्म भागवत धर्म है। वो भागवत धर्म के माध्यम से हम यहां से बाहर निकल सकते हैं इस संसार से। श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंध में बताया गया है, सवै पुंसो परो धर्मो यदो भक्ति अधोक्षते अहेतु की अप्रतिहता यात्मा सु प्रसिद्धति। बता रहे संपूर्ण मानवता के लिए परम वृत्ति धर्म वही है जिसके द्वारा सारे मनुष्य दिव्य भगवान की प्रेमा भक्ति प्राप्त कर सके, यही परम धर्म है। ऐसी भक्ति अकारण तथा अखंड होनी चाहिए जिससे आत्मा पूर्ण रूप से तुष्ट हो सके, आत्मराम बन सके, वंदनाम नहीं। तो क्या है, पूरा मनुष्य भगवान की प्रेमा भक्ति प्राप्त करने के लिए ही ये जन्म मनुष्य जीवन मिला है। ह्यूमन लाइफ का मेन पर्पस यही है कि जो हमारा भगवान से कनेक्शन है उस कनेक्शन को हम लोग एस्टैब्लिश करें। जो कनेक्शन ब्रेक हो चुका है हमारा, अभी भी जब हम भक्ति के कार्य भी करते हैं, चैंटिंग करते हैं, तो चैंटिंग मैकेनिकल चैंटिंग चल रही होती है, उसमें कोई कनेक्शन नहीं होता, हमारा भगवान से कोई कनेक्शन नहीं होता। हम भगवान का नाम ले रहे होते हैं पर वो कानों से सुना जा रहा होता है, वो हृदय में जा नहीं रहा होता सर, वो एक एक्सटर्नल फॉर्मेलिटी चल रही होती है। क्योंकि जब तक एक कनेक्शन नहीं होगा हमारे भगवान से, वो कनेक्शन हमें एस्टैब्लिश करना पड़ता है रियल धर्म के माध्यम से, प्रेमा भक्ति के माध्यम से। आज कह रहे हैं वासुदेव भगवती भक्ति योग प्रयोजिता जन्यति आशु वैराग्यम ज्ञान चयन अयतुकम। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने से मनुष्य तुरंत ही अहेतुकी ज्ञान तथा संसार से वैराग्य प्राप्त कर लेता है। तो अगर हमारा संसार के प्रति वैराग्य नहीं आ रहा, इसका मतलब क्या है, अभी भी हमारा शरीर इंद्र तृप्ति है, अभी भी हमारा, देखिए शरीर का मतलब क्या है, व्यक्ति किसी भी स्थिति में क्यों ना हो, है ना, अगर सुखी है तो अपने शरीर के पास आता है, अगर दुखी है तो एक ही जगह पर जाकर वहीं पर शरण लेता है। तो अभी भी अगर हम कभी भौतिकता वाले व्यक्ति बहुत खुश होते हैं तो इंद्र तृप्ति का सहारा लेते हैं, कभी बहुत दुखी होते हैं तो इंद्र तृप्ति का सहारा लेते हैं, क्योंकि उनका शरीर इंद्र तृप्ति है। आगे बता रहे धर्म स्वनिष्ठता पुंसाम विश्व क्षेत्र कथा सुना ना उत्पाद यदि रतिम श्रम ये भी केवलम। मनुष्य द्वारा अपने पद के अनुसार संपन्न की गई वृत्तियां यदि भगवान के संदेश के प्रति आकर्षण उत्पन्न ना कर सके तो वे निरी व्यर्थ का श्रम होती है। तो हम जो भी कार्य कर रहे हैं अगर उससे हमारा कृष्ण के प्रति अटैचमेंट नहीं बन रहा, अगर हमारा भगवान के प्रति सरेंडर, भगवान के प्रति हमारा रिलेशन जो है, हमारा भगवान के सर्वेंट है, अगर हम इसे एस्टैब्लिश नहीं कर पा रहे, इसका मतलब क्या है, श्रम एक भी केवलम, ये केवल व्यर्थ है। और इसी व्यर्थ की चीजों में सारी चीजें फ्लोट करती जा रही है, कहती जा रही है, और इसी के साथ साथ हम भी कहते जा रहे हैं। आगे बता रहे हैं धर्मस्य हि अपवर्गस्य नार्थो अर्थाय कल्पते नार्थस्य हि धर्म नार्थस्य धर्मकामस्य कामो लाभाय इष्टतः। समस्त वृत्ति पर कार्य निश्चय ही परम मोक्ष के निमित्त होते हैं, उन्हें कभी भौतिक लाभ के लिए संपन्न नहीं करना जाना चाहिए। इसमें इससे भी आगे ऋषियों के अनुसार जो लोग परम वृत्ति धर्म में लगे हैं उन्हें चाहिए कि इंद्र तृप्ति के संवर्धन हेतु भौतिक लाभ का उपयोग कदापि नहीं करना चाहिए। तो यहां पर क्या बता रहे हैं कि कोई भी जो व्यक्ति जो भक्ति करना चाहता है, जो भक्त बनना चाहता है, उसे किसी प्रकार की इंद्र तृप्ति के कार्य में नहीं करना चाहिए, धन कमाने के सब में नहीं करना चाहिए। और अगर उसने धन कमाया भी तो कभी भी इस धन का प्रयोग उसे अपनी इंद्र तृप्ति के लिए नहीं करना चाहिए, उसे इस धन का प्रयोग करना चाहिए भगवान का प्रचार करने के लिए, भगवान के भक्ति को, इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए। क्योंकि केवल एकमात्र आंदोलन यही है जो कृष्ण भावना भवन का पूरी तरीके से प्रचार कर रहा है, बाकी सारे आंदोलन क्या है, बहुत डिस्काउंट दे रहे हैं, हैवी ड्यूटी डिस्काउंट दे रहे हैं, आपको कुछ भी करो आप, परंतु एक बात यही आंदोलन है जो प्रचार कर रहा है असली धर्म क्या है। तो भक्तों को चाहिए कि अगर वो धन कमा भी रहे हैं तो अपना धन का प्रयोग करें इस आंदोलन के प्रचार में, इस आंदोलन को आगे बढ़ाने में, अपनी इंद्र तृप्ति में नहीं। और यही असली एजुकेशन है, यही स्पिरिचुअल एजुकेशन है, यही असली ज्ञान है। चैतन्य महाप्रभु ने रामानंद राय से पूछा था कि रियल एजुकेशन क्या है, तो रामानंद राय ने उत्तर दिया एडवांसमेंट इन कृष्णा कॉन्शियसनेस इज द बेस्ट एजुकेशन। असली एजुकेशन यही है कि किस प्रकार से हम कृष्णा कॉन्शियसनेस में एडवांस कर सके, आगे बढ़ सके भक्ति में, यही असली एजुकेशन है। तो ये भौतिक संसार में रहने के बाद हमारी जो भी हमारी धारणाएं हैं, धन क्या है, सुख क्या है, ये सब धारणाएं पूरी तरीके से बदल चुकी है। असली धन श्रीमद् भागवत में छठे स्कंध में बताया गया है, असली धार्मिक सिद्धांतों का निर्माण भगवान द्वारा किया जाता है। पूर्णतया सतोगुणी महान ऋषि तक जो सर्वोच्च लोगों में अधिकार जमाए हुए हैं, असली धार्मिक सिद्धांतों का को सुनिश्चित नहीं कर सकते, ना ही देवता ना सिद्ध लोगों के नेता ही कर सकते हैं। तो असुरों सामान्य मनुष्यों विद्याधरों तथा चारणों की कौन करे। तो धर्म क्या है, ये धर्म की स्थापना केवल भगवान ही कर सकते हैं कि रियल धर्म क्या है। हम अपनी तरफ से जो मनोधर्म बना के बैठे हैं दरअसल धर्म नहीं है, ये एक प्लानिंग है हमारी कि कैसे इंद्र तृप्ति को बेटर किया जा सके। बस भगवान श्री कृष्ण उद्धव को संदेश देते हुए श्रीमद् भागवत में बताते हैं, ध्यानपूर्वक सुनिएगा, वास्तविक ऐश्वर्य भगवान के रूप में मेरा निजी स्वभाव है जिसके माध्यम से मैं 6 असीम ऐश्वर्यों को प्रकट करता हूं। जीवन का सबसे बड़ा लाभ मेरी भक्ति है, और असली शिक्षा आत्मा के भीतर के झूठे द्वैत भाव को समाप्त करना है। तो क्या बता रहे हैं, जीवन का सबसे बड़ा लाभ, सबसे बड़ा धन क्या है, मेरी भक्ति है। और असली शिक्षा क्या है, रियल एजुकेशन क्या है, आत्मा के भीतर के बैठे झूठे द्वैत भाव को समाप्त करना। आत्म राम बनना रियल एजुकेशन है, द्वंद राम बनना रियल एजुकेशन नहीं है, ये झूठ है। असली उदारता अनुचित कार्यों से घृणा करना है। विरक्ति जैसे सद्गुण का होना सौंदर्य है, विरक्ति ये सौंदर्य है अपने आप में। भौतिक सुख तथा दुख को लांघना असली सुख है, और असली सुख दुख तो यौन सुख की खोज में अपने को फंसाना है। तो ये यौन सुख में अपना को फंसाना यही दुख है, जिसे हम सब सुख मांगे बैठे हुए हैं। पंडित वही है जो बंधन से छूटने की विधि जानता है, और मूर्ख वही है जो असली पहचान अपने शरीर तथा मन से करता है, जो अपने आप को शरीर और मन मान के बैठा हुआ है और इसी के अनुसार कार्य करता है, वही मूर्ख व्यक्ति है। जीवन में असली मार्ग वही है जो मुझ तक ले जाने वाला है, और कुमार इंद्रतृप्ति है जिससे चेतना मोहग्रस्त हो जाती है। तो ये कुमार है, हमारी चेतना और खत्म हो जाती है। वास्तविक स्वर्ग सत्वगुण की प्रधानता है, और अज्ञान की प्रधानता नरक है। मैं समस्त ब्रह्मांड की गुरु रूप में हर एक असली मित्र हूं। मनुष्य का घर अपना उसका शरीर है। हे प्रिय मित्र उद्धव, जो सद्गुणों से युक्त है वही धनी खा जाता है, और जो जीवन से असंतुष्ट रहता है वह निर्धन। तो निर्धन व्यक्ति कौन है, जो अपने जीवन से असंतुष्ट रहता है, और धनी व्यक्ति कौन है, कौन है व्यक्ति जो संतुष्ट रहता है, वह धनी व्यक्ति है। इसके विपरीत जो व्यक्ति इंद्र तृप्ति में आसक्त रहता है वे दास होता है। हे उद्धव, मैंने तुम्हारे द्वारा पूछे गए, यहां पर भगवान कृष्ण उद्धव को संदेश देते हुए सारी चीजें बता रहे कि धन क्या है। ये श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद के 19वें अध्याय का 40-45 श्लोक है, आप इसे पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छा बात पर रहे हैं। और पता श्लोक है 11वें स्कंद के 19वें अध्याय का 40-45 श्लोक, इसमें भगवान बता रहे हैं सुख क्या है, दुख क्या है, कौन व्यक्ति धनवान है। तो हमें समझना पड़ेगा कि रियल एजुकेशन क्या है, और रियल धनवान देखिए, हम में से कोई भी रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, धर्मदास गोस्वामी, इनको इसलिए पूछते नहीं है कि ये कितने धनवान व्यक्ति थे, हम इनको इसलिए पूछते हैं कि इतना धनवान होने के बाद भी इन्होंने कैसे एक क्षण में सब कुछ त्याग दिया। क्योंकि क्या है, रियल धन क्या है इसकी नॉलेज नहीं थी, रियल एजुकेशन इनके पास थी। तो रियल एजुकेशन क्या है हमें समझना पड़ेगा। आजकल भौतिक संसार में हम देख रहे हैं कि जो भी बच्चे हैं वो बच्चों की बचपन से ही इंद्र तृप्ति में रुचि होती है। किस कारण से रुचि होती है, क्योंकि माता पिता की इंद्र तृप्ति में बहुत रुचि होती है, और उस बच्चे को जन्म देने वाले माता पिता ही हैं, बिना किसी प्रशिक्षण के, बिना किसी ट्रेनिंग के उन्होंने बच्चे को जन्म दिया है। उसके बाद अगर ब्लेम करते हैं बच्चे को, तो बच्चे का क्या कसूर है। आजकल बच्चा पैदा कैसे होता है, रात में कोई शराब की बोतल ज्यादा पी ली, ड्रिंक ज्यादा कर लिया, तो उसके फलस्वरूप बच्चा पैदा होता है। ये एजुकेशन है। इसके बाद क्या है, उस बच्चे का संबंध उस बोतल से ही रह जाता है। जब वो बड़ा होता है तो बोतल से ही उसका संबंध मेंटेन रहता है, और वो भी बड़ा होकर यही इंद्र तृप्ति के कारण रहता है। तो रियल एजुकेशन क्या है, कैसे कृष्ण भाव में बच्चे पैदा किए जा सके, ये असली एजुकेशन है। कैसे ये रियल एजुकेशन है, किस प्रकार से अपने आप को, हमारे सबॉर्डिनेट्स हैं उनको कैसे कृष्ण कॉन्शियसनेस में ट्रेन किया जा सके, ये रियल एजुकेशन है। किस प्रकार से शरीर को त्यागा जा सके, ये रियल एजुकेशन है। जब हम इन एजुकेशन का सहारा लेंगे, रियल एजुकेशन का, तो सारी मटेरियल एजुकेशन अपने आप खत्म हो जाएगी। देखिए परीक्षित महाराज, जब उनको पता था मृत्यु आने वाली है तो वो रोए नहीं मृत्यु की, क्यों, क्योंकि उनके पास रियल एजुकेशन थी, असली ज्ञान उनके पास था। उनको पता था कि असली धन क्या है, भगवान की भक्ति। ये जो भौतिक संसार में सेटलमेंट सेटल होना, ये असली तो कुछ था ही, तो सब टेंपरेरी था, आज नहीं तो कल तो जान ही था, तो इसमें दुखी होने वाली बात क्या है। तो परीक्षित महाराज को इसमें कोई दुख नहीं लगा। तो यही रियल एजुकेशन है कि अपनी लाइफ को किस प्रकार से हम प्रिपेयर करें, कि डेथ मृत्यु के समय हम कृष्ण का स्मरण कर सके, मृत्यु के समय भगवान का नाम ले सके। देखिए हम छोटी छोटी डिफिकल्टीज हमारी लाइफ में आती है तो हमारे से भगवान का नाम नहीं करता, छोटी छोटी डिफिकल्टीज प्रॉब्लम्स आती है तो भगवान को याद नहीं कर पाते। एक बार एक भक्त थे मायापुर में, वो उनका एक्सीडेंट हो गया था, गिर गए थे, तो मिले गए हॉस्पिटल में, तो माँ माँ चिल्ला रहे थे, उसमें माँ क्या करेगी इसमें, आपको भगवान का नाम लेना चाहिए इसमें। अगर आपको दुख है तो कृष्ण कृष्ण बोलो, ये दुख भी आपके उद्धार का कारण बन जाएगा। अगर हैप्पीनेस है तो कृष्ण कृष्ण बोलो, ये जो खुशी है ये आपको उद्धार का कारण बनेगी। ये तो फिर भी थोड़ा बेटर है। कुछ लोग तो हर छोटे छोटे शिट शिट बोलने की आदत होती है, अब ये शिट बोलने कोई मरेगा तो क्या उसका रहना होगा, क्या क्या दुर्गति क्या होगा उसके। तो हमें चाहिए कि हर चीज में भगवान का नाम लेने की हैबिट बनाए, छोटी छोटी खुशी में, छोटे छोटे दुख में, हर चीज में भगवान का नाम लेने की हैबिट बनाए। जब ऐसी हैबिट हमारी मेंटेन हो जाएगी तो यही हैबिट जब असली दुख आएगा, मृत्यु आएगी, तो नेचुरली स्वतः भगवान का नाम लेगा। पूरी लाइफ कोई प्रिपरेशन नहीं है, कोई एजुकेशन नहीं है, कोई ट्रेनिंग नहीं है, और हम सोचे कि अंधकार जमाव में स्मरण मुक्ता लेगा आखिरी समय में करवा चुका लूंगा। तो यही मूर्खता है कि हम हर असत्य चीज को सत्य मान के बैठे हैं। मृत्यु के समय जब कंठा अवरोधन हो जाएगा, बिल्कुल गला गला का फाग पेट से भर जाएगा, उस समय क्या व्यक्ति भगवान का नाम लेगा, नहीं ले पाएगा। तो रियल एजुकेशन क्या है हमें ये समझना चाहिए, और रघुनाथ दास गोस्वामी ने रियल एजुकेशन क्या है इस पर पुस्तक लिखी है, महाशिक्षा, माइंड को ट्रेनिंग देना, माइंड को एजुकेट करना। तो रियल एजुकेशन यही है कि हम अपने मन को ट्रेन करें, मन को एजुकेशन दें, हम लोग मन को एजुकेट करें, एजुकेटिंग द माइंड इज रियल एजुकेशन, मन को ट्रेनिंग देना। अगर माइंड इतना फिल्टरिंग है ना, ये बहुत सुंदर भजन है, भजाओ रे मन, इसमें क्या बता रहे हैं, ओ माइंड जस्ट वर्शिप द लोटस फीट ऑफ द सन ऑफ नंद। हे मन, भगवान के कृष्ण नंद बाबा के जो पुत्र हैं उनके चरण कमलों का भक्ति करो, which make one fearless, जो सबको निर्भीक बनाने वाला है। Having obtained this real human birth, अब आपको मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है, जो किसके मिला है, to cross over this ocean of worldly existence through the association of saintly persons। या आध्यात्मिक मनुष्य जीवन इसके मिला है ताकि भक्तों का संग करके इस जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर निकलो। Both in the day and at night, I remain sleepless, suffering the pains of the heat and cold, the wind and the rain। ना, तो यहां पर क्या है कि बता रहे हैं कि पूरा दिन रात किसमें बिता दिया, खुशी दुख में, सर्दी गर्मी में, फॉर फ्रैक्शन ऑफ लिविंग हैप्पीनेस, एक छोटे से सुख के लिए ना, आई हैव यूजलेसली सर्व्ड विकेट एंड मिजरेबली मैन। छोटे से सुख के लिए हमने ऐसे से लोगों की भक्ति की है, ऐसे से लोगों की पूजा की है जिसकी जरूरत नहीं थी। व्हाट एश्योरेंस ऑफ रियल हैप्पीनेस इज देयर इन वंस वेल्थ, यूथफुलनेस, सन्स एंड फैमिली मेंबर्स। तो किस प्रकार का सुख है इसमें, हमारे इस भौतिक धन में, ना धनम ना जनम ना सुंदरी, यही बताया गया चैतन्य महाप्रभु ये बता रहे हैं, जब तक हम इसमें सुख मान के बैठेंगे, ना धन ना जनम सुंदरी, तब तक अनर्थ निवृत्ति कभी नहीं हो पाएगी, तब तक हम अनर्थों में फंसे रहेंगे। अनर्थ निवृत्ति करने के लिए इससे ऊपर निकलना पड़ेगा हमारे, और इससे ऊपर निकलने के लिए हम अपने आप नहीं कर पाएंगे। कोई भी कार्य करने के लिए हमें मोटिवेशन चाहिए होता है, एजुकेशन चाहिए होती है। देखिए बच्चा होता है उसकी साइंस में इतनी कन्विक्शन कैसे होती है, बचपन से साइंस पढ़ता हुआ आ रहा होता है उसकी कन्विक्शन होती है, पर कुछ लोगों की कन्विक्शन ज्यादा नहीं होती क्योंकि उन्होंने 10th तक साइंस ली होती है। उन लोगों की कन्विक्शन ज्यादा होती है जिन्होंने 12th तक साइंस ली है, उनकी कन्विक्शन ज्यादा होती है। जिन्होंने ग्रेजुएशन तक साइंस ली है, इंजीनियरिंग ली है, उनकी कन्विक्शन और ज्यादा होती है। जिन्होंने और आगे फर्दर स्टडीज किया उनकी कन्विक्शन और ज्यादा होती है। तो हमारी कन्विक्शन लैकिंग किससे रहती है कृष्णा कॉन्शियस में, क्योंकि हमारी एजुकेशन बहुत लैकिंग है। जितना ज्यादा हम अपनी एजुकेशन को इंक्रीज करते जाएंगे, स्पिरिचुअल एजुकेशन को, उतना ही हमारा कृष्णा कॉन्शियस में फेथ इंक्रीज होता जाएगा। तो भक्तों को ये याद रखना चाहिए और हमेशा ये याद ध्यान देना चाहिए कि हमारा असली शेल्टर किसमें है। सत्यानंद स्वामी महाराज एक बार पूछ रहे थे अपने प्रवचन में, वेयर इज योर शेल्टर, हमारा शेल्टर है किसमें, ये हम ध्यान दें इस बात पे, किस चीज की हम शरण ले रहे हैं। ये जो अभी हमने श्रीमद् भागवतम का श्लोक पढ़ा था कि कृष्ण ही धर्मों का बनाने वाले हैं, इसके आगे बता रहे हैं, इसके आगे कई श्लोक क्या है जो इस प्रभुपाद की तात्पर्य में लिख रहे हैं स्वयं को नारद आश्रम को, इसके आगे से हम कंटिन्यू करेंगे। ये दिव्य धार्मिक सिद्धांत जो भागवत धर्म या भगवान की शरणागति तथा भगवत प्रेम कहलाता है, प्रकृति के तीनों गुणों के अकलुषित है। यह अत्यंत गोपनीय और सामान्य मनुष्य के लिए दुर्बोध है, किंतु संयोगवश कोई भाग्यवान इसे समझ लेता है तो वह तुरंत मुक्त हो जाता है और भगवत धाम लौट जाता है। तो हमारे पास इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि चैतन्य महाप्रभु की कृपा से, चैतन्य महाप्रभु के जो आगे अनुयायी आए हैं वो शरण गोस्वामी, शरण प्रभुपाद और गुरु, उनकी कृपा से हमारे को ये हरे कृष्ण महामंत्र की भक्ति प्राप्त हो गई है। तो हमें चाहिए कि हम अपना हृदय शरीर इस हरे कृष्ण महामंत्र को बनाए, भगवान के नाम को अपना असली शरीर बनाए। इसके आखिरी श्लोक में बता रहे यहां पर, एता वाने लोकेस्मिन् पुंसां धर्मः परः स्मृतः भक्ति योगे भगवती तन नाम गृह्णाति भी। भगवान नाम के कीर्तन से प्रारंभ होने वाली भक्ति ही मानव समाज में जीव के लिए परम धार्मिक सिद्धांत है। तो परम धर्म, परम धार्मिक सिद्धांत जिस धर्म की हम चर्चा कर रहे हैं वो यही है, भगवान के नाम का कीर्तन करना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और जब इस धर्म की जो श्रीमद् भागवत में बताया गया है, और यही धर्म हरे कृष्ण महामंत्र जो कलयुग का युग धर्म है, अगर हम असली धर्म की शरण लेंगे, रियल एजुकेशन लेंगे, तो हमारे अंदर जो भी भावनाएं हैं इंद्र तृप्ति की भोगने की, ये सब भावनाएं खत्म होंगी और हमारी नेचुरल रुचि उत्पन्न होगी कृष्ण की सेवा के प्रति। तो हमें चाहिए कि शास्त्रों के माध्यम से, भक्तों के संघ के माध्यम से, और विशेष रूप से पूरी तरीके से अहेतुकी अप्रतिहता शरणागति हम लोग भगवान के नाम के लिए। तो मैं यही विराम देना चाहूंगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथ आशीर्वाद।